रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम पवित्र कुरान के सूरह बकरा की 207वीं से 209वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। तिलावत का श्रेय पाया है श्री सब्ज अली ने।
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونا میں ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب پورن روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم اسپشٹ نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے تو جان لو کہ نسندے ایشور اتینت پربھتوشالی اور تتو درشی ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج شکروار ہے، آبان کی 6، ربیع الثانی کی 2 اور اکتوبر کی 28 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد راجنیتک چرچا، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے پتر سنسار، اور انتم کاریکرم ہوگا وگیان کی ڈگر۔ تازہ اور وسیت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ شروتاؤ، فریکوینسی یا ہماری چینج ہو رہی ہیں، اور یہ 8 آبان یعنی 30 اکتوبر سے فریکوینسیاں بدل جائیں گی۔ نئی فریکوینسیاں اس پرکار ہیں، آپ ہمارا کاریکرم سنیں گے 31 میٹر بینڈ 9,620 کلو ہرٹز پر۔ अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति ने इराक के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पवित्र धार्मिक स्थल शाह चराग आतंकवादी हमले के खिलाफ ईरान के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। ईरान के आमुल शहर में स्वयंसेवी बल बसीज के दो सदस्यों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा के पास भारत नया सैन्य हवाई अड्डा बना रहा है। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने इराक के नए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का पद संभालने और देश में नई सरकार के गठन के लिए मुबारकबाद पेश की है। शुक्रवार को राष्ट्रपति रईसी ने इराक के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सुदानी को मुबारकबाद दी और नई सरकार के गठन में सफलता की मनोकामना की। ईरान के राष्ट्रपति ने इराकी प्रधानमंत्री के नाम अपने बधाई संदेश में कहा, स्वतंत्र और मजबूत इराक की जो क्षेत्र में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभा सके और क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान दे सके, इराकी जनता और क्षेत्रीय देशों के पक्ष में है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरान ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भूमिका का समर्थन किया है और वो इराक के साथ अपने रिश्तों के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने आशा जताई कि शिया सुदानी के शासनकाल में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और परस्पर सहयोग में विस्तार होगा। इराक में पिछले साल अक्टूबर में आम चुनाव आयोजित हुए थे, लेकिन किसी भी दल या राजनीतिक गठबंधन को सरकार के गठन के लिए जरूरी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके बाद से सरकार के बनाने के समस्त प्रयास विफल हो गए थे। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद ईरान के विभिन्न शहरों में नमाजियों ने शिराज स्थित पवित्र स्थल शाह चराग में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। गौरतलब है कि बुधवार को शिराज में शिया मुसलमानों के सातवें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बेटे और आठवें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के भाई के पवित्र रोजे में एक आतंकवादी ने घुसकर जायरीन पर फायरिंग करके 13 लोगों को शहीद और 30 अन्य को घायल कर दिया था। तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश ने एक बयान जारी करके इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की। तेहरान समेत विभिन्न शहरों में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने इस आतंकवादी घटना के खिलाफ प्रदर्शन किए और इस घटना की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने इस आतंकवादी हमले में शहीद और घायल होने वालों के परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की और अपराधियों को अदालत के कटहरे में लाने की मांग की। ईरान के माजिंदरान प्रांत के आमूल शहर में स्वयंसेवी बल बसीज के दो सदस्यों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। शुक्रवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक माजिंदरान प्रांत के गवर्नर के राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक सहायक रूहुल्ला सलगी ने बताया कि गुरुवार को दो बसीजी आमूल शहर में एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। गौरतलब है कि ईरान विरोधी फारसी भाषा के संचार माध्यम इस्लामी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और पिछले महीने एक कुर्द लड़की की मौत के बाद इन संचार माध्यमों ने ईरान में दंगे भड़काने में भरपूर भूमिका निभाई है। ये संचार माध्यम सांप्रदायिक और जातीय भावनाओं को भड़काकर ईरान के विभाजन का एजेंडा चला रहे हैं। इन संचार माध्यमों में सऊदी अरब सरकार पोषित ईरान इंटरनेशनल की भूमिका उल्लेखनीय है। माजिंदरान प्रांत के गवर्नर के राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक सहायक सलगी का कहना था कि आमूल में दो स्वयंसेवी बल हादी चाकसरी और अली फाजिली को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। ان کا کہنا تھا کہ یہ دو جوان حامول کے امام خمینی روڈ پر شہید ہوئے ہیں، حالانکہ سرکشا بلوں سے ان کا سمبندھ نہیں تھا۔ حامول کے پولیس ادھیکاری علی داداش تبار کا کہنا ہے کہ شہر میں اپدرو پھیلانے والے 21 سرغناؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتیہ وایو سینا پاکستان کی سیما کے پاس ڈیسا میں ایک سینے ہوائی اڈے کا نرمان کر رہی ہے، جسے دیش کی ہوائی سرکشا کے لیے مہتوپورن بتایا جا رہا ہے۔ نیا سینے ہوائی اڈا اتری گجرات کے بناسکانٹھا ضلع میں استھت ہے اور یہ اگلے سال دسمبر تک بن کر تیار ہو جائے گا۔ پچھلے ہفتے بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی نے گجرات میں اس سینے ہوائی اڈے کا شلانیاس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دیش کی رکشا کے لیے ایک پربھاوی کیندر کے طور پر ابھرے گا۔ یہ گجرات میں استھت پانچواں سینے ہوائی اڈا ہے۔ اس کے علاوہ راجیہ میں وڑودرا، جامنگر، بھوج اور کچھ میں بھارتیہ وایو سینا کے بڑے اڈے ہیں۔ ان میں کچھ اور بھوج کے اڈے ڈیسا کی طرف پاکستان کی سیما کے پاس استھت ہیں۔ یہ اڈا 4519 ایکڑ میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ زمین وایو سینا کے پاس پہلے سے تھی اور اس سمے وہاں 20 نگرانی ٹاور بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ارد گرد 22 کلومیٹر لمبی دیوار بھی بنی ہوئی ہے۔ بھارت میں وایو سینا کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو دیش کے بھیتر بنانے کے وشے پر یورپ کی ایئر بیس کمپنی اور ٹاٹا کمپنی کے بیچ سمجھوتا ہوا ہے۔ بھارت میں بھارتیہ وایو سینا کے C-295 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی رویوار کو گجرات کے وڑودرا میں اس پلانٹ کا ادگھاٹن کریں گے جہاں سے ایئر کرافٹ بنے گا۔ یہ پروجیکٹ اس وقت گجرات میں لایا گیا جب راجیہ میں آگامی چناؤ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بھارت کے رکشا سچیو اجے کمار کا کہنا ہے کہ یہ پلانٹ ایئر کرافٹ کے ایکسپورٹ کے ساتھ بھارتیہ وایو سینا کے اترکت آرڈر کی بھی پورتی کرے گا۔ بھارت کے راجیہ چھتیس گڑھ کے سارگڑھ بلائی گڑھ ضلع میں پولیس نے ایک پھل وکریتا کو پاکستانی جھنڈا پھیرانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ ضلع کے سریا تھانہ کھیتر میں پاکستانی جھنڈا پھیرانے کے آروپ میں 52 ورشیہ پھل وکریتا مشتاق خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مشتاق کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ آروپی کا کہنا ہے کہ اس کے بچے نے کھیل کھیل میں یہ جھنڈا چھت پر لگا دیا تھا۔ پاکستانی جھنڈا گھر میں کہاں سے آیا اور اسے لگانے کا کیا مقصد تھا، پولیس اس سمبندھ میں جانچ کر رہی ہے۔ زمبابوے کی کشما کیجیے گا T20 ورلڈ کپ کے ایک رومانچک مقابلے میں زمبابوے نے پاکستان کو ہرا دیا اور ایک بڑا الٹ پھیر کر دیا۔ زمبابوے کی اس جیت کے ساتھ پاکستان لگ بھگ اس ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری زمبابوے کی ٹیم نے پاکستان کے سامنے 131 رنوں کا آسان لکشیہ رکھا تھا۔ آخری گیند پر پاکستان کو جیت کے لیے 3 رنوں کی درکار تھی۔ بریڈ ایوانس کی فل لینتھ گیند پر زوردار پرہار کر شاہین آفریدی نے لانگ آن کی دشا میں شاٹ کھیلا اور 2 رن کے لیے دوڑ لگائی۔ اگر پاکستان وہاں 2 رن پورے کر لیتا تو میچ سپر اوور تک جا سکتا تھا اور امید تھی کہ وہاں سے پاکستان اس میچ کو جیت سکتا تھا، لیکن آخری گیند پر میدان پر چست کھڑے زمبابوے کے فیلڈروں نے انہیں یہ موقع نہیں دیا۔ عراق کے سانسدوں نے پردھان منتری محمد شیعہ سودانی کی سرکار کو وشواس مت دے دیا ہے۔ بغداد سے ہمارے سنواددا کی رپورٹ کے مطابق سنسد میں متدان کے دوران عراق کے راشٹرپتی عبداللطیف راشد، عراق میں سنیوکت راشٹر سنگھ کے مشن کے پرمکھ جینین پلاس خالد، سپریم جوڈیشیل کاؤنسل کے پرمکھ فائق زیدان اور انیہ ورشٹھ ادھیکاری موجود تھے۔ عراق کے پرتیرودھ کرتا گٹ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ریاض نے ایران کے خلاف اپنا گندا میڈیا پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ عراقی پرتیرودھ کرتا گٹ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسلامی گردنجی ایران کے خلاف اپنی ناپاک اور بھڑکاؤ بھومیکا پر آگرہ کر رہا ہے اور اس سندر میں اپنے میڈیا اور تکفیری پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے بیچ سمندری سیماؤں کے ریکھانکن و نردھارن کے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے سمندری سیماؤں کے بیورے پر لبنان کے ساتھ اپنی سرکار کے سمجھوتے پر ہستاکشر کی سوچنا دی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے شیراز شہر میں استھت حضرت شاہ چراغ کے روزے پر ہوئے آتنکی حملے پر امریکہ کی چپی کے بارے میں،
ٹارگیٹنگ ریلیجیس شرائن،
اور پھر بات کریں گے شیراز میں ہوئے آتنکی حملے اور لبنان اسرائیل کے بیچ ہوئے سمجھوتے پر سید حسن نصر اللہ کی پرتکریا کے بارے میں، اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر میں سرکشا بلوں اور چھاپہ ماروں کے بیچ ہوئی جھڑپ اور محبوبہ مفتی کے بیان کے بارے میں ہمارے سمباددات آپ کو بتائیں گے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش اور
تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد امریکہ کا بے شرم چہرہ پھر سے سامنے آنے اور اس ہردے ودارک گھٹنا پر دنگائیوں کا سمرتھن کرنے والوں کی چپی کے بارے میں۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے سمباددات علی رجبی، ہمارے ساتھی اختر عباس کی آواز میں۔
ٹارگیٹنگ ریلیجیس شرائن،
سنیوکت راشٹر سنگھ کے پروکتا نے ایران کے شیراز شہر میں استھت پوتر شاہ چراغ کے روزے پر ہوئے آتنکوادی حملے کی نندا کی ہے۔ سنیوکت راشٹر سنگھ کے پروکتا اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ میں نے ایران کے شہر شیراز میں ہوئے آتنکوادی حملے کی تصویروں کو دیکھا۔ میں اس آتنکی حملے کی کڑے شبدوں میں نندا کرتا ہوں۔ پوتر دھارمک ستھلوں میں ہونے والے آتنکی حملوں کی ہم نندا کرتے ہیں۔ ہم ایران کی سرکار اور جنتا کے پرتی اپنی سانتوانا پیش کرتے ہیں۔
We stand with the citizens and brave women of Iran.
وہی امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے ایران میں دنگائیوں کا سمرتھن جاری رکھنے کی بات کہی ہے۔
So human rights.
امریکہ کے ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے بھی اپدرویوں کے سمرتھن کی ہی بات دہرائی ہے، لیکن کسی نے بھی شاہ چراغ پر ہوئے آتنکوادی حملے کی نہ کیول نندا نہیں کی بلکہ اس آتنکی حملے میں شہید اور گھائل ہونے والوں کے پرتی بھی ایک ہمدردی کا شبد بھی نہیں کہا۔ یہاں تک کہ امریکی ودیش منترالے کے اپ پروکتا ویدانت پٹیل نے اپنی 40 منٹ کی پریس وارتا میں 15 منٹ تک ایران میں دنگا کرنے والوں کا سمرتھن اور ایران پر لگائے گئے نئے پرتیبندھوں کا اوچت درشانے میں گزار دیا۔ لیکن شیراز شہر میں استھت پوتر شاہ چراغ کے روزے پر ہوئے آتنکوادی حملے کے سمبندھ میں ایک بھی شبد نہیں کہا۔ وہیں شیراز میں ہوئے آتنکوادی حملے کے بارے میں جب ایک پترکار نے ویدانت پٹیل سے پوچھا کہ کیا آپ ایران میں ہونے والے آتنکوادی حملے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، تو امریکی ودیش منترالے کے اپ پروکتا نے اس بات کا इस तरह जवाब दिया।
वेदांत
पटेल ने कहा कि मैंने अभी तक इस बारे में कोई खास चीज नहीं सुनी है, हालांकि हम इस संबंध में अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों प्रवक्ताओं ने विस्तार से ईरान के बारे में और ईरान में होने वाले दंगों के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वहीं अमेरिकी मीडिया भी, जो ईरान की छोटी से छोटी घटनाओं पर हंगामा मचा देता है, इस आतंकवादी घटना पर चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। यही तो है अमेरिका का वास्तविक चेहरा। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट।
और अब चर्चा करते हैं शिराज में हुए आतंकवादी हमले पर हिजबुल्लाह महासचिव ने याद किया शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद मेहंदी अल मुहंदिस को। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं लेबनान की राजधानी बैरूत से IRIB के संवाददाता हसन अजीम जादे, हमारे साथ ही सैयद मीसम की आवाज में।
बुधवार की शाम ईरान के शिराज शहर में स्थित शाह चराग के रोजे पर हुए आतंकवादी हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अमरीका ही दाइश और तकफीरियों का मुख्य समर्थक है।
من الشعب الإيراني العزيز والصبور ومن عائلات الشهداء।
हिजबुल्ला के महासचिव ने खाद्य और औद्योगिक उत्पाद की एक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सबसे पहले हजरत शाह चिराग के पवित्र रोजे पर होने वाले आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर और ईरान की जनता को इस हृदय विदारक घटना पर संवेदना प्रकट की।
الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج ابو مهد المهندس
و سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور سید بدر الدین نے سنگھرش نہ کیا ہوتا اور بلیدان نہ دیا ہوتا تو آج جو شیراز میں ہوا ہے وہ ہر دن ایران کے کسی نہ کسی شہر میں ہو رہا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نہ کیول ایران بلکہ کھیتر کے کسی نہ کسی شہر میں اس طرح کی گھٹنائیں ہر دن ہو رہی ہوتی۔ سید نصر اللہ نے کہا کہ داعش کا اصلی کام امریکہ کی سیوا کرنا ہے، ان آتنکوادیوں کی مدد سے وہ افغانستان، ایران اور اس کے پڑوسی دیشوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس بیچ سید حسن نصر اللہ کے بھاشن سے کچھ گھنٹے پہلے لبنان کے راشپتی مشل اون نے لبنان اور اسرائیل کے بیچ سمندری سیماؤں کے ریکھانکن اور نردھارن کے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے۔ اس معاملے میں مدھیستہ کرنے والے امریکی ڈپلومیٹ آموس ہیکسٹین نے بیروت میں پترکار سمیلن میں کہا کہ یہ ایتیحاسک دن ہے، کیونکہ اس دن وہ سمجھوتا ہو رہا ہے جس سے لبنان کے لیے بہت سے افسروں کے دروازے کھل جائیں گے۔
ترسیم الحدود۔
لبنان کے راجنیتک ٹیکہ کار منصور اولیان کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد پرتیرودھک بل کے ڈرونوں اور میزائلوں کے ساتھ ساتھ سرکار نے سیما ورتی کھیتروں کے سبھی ادھیکاروں کو سرکشت کر لیا ہے۔ وہیں حزب اللہ مہاسچیو نے اپنے بھاشن کے دوسرے بھاگ میں لبنان اور اویدھ زیونی شاسن کے بیچ سمندری سیما کو لے کر سمجھوتے کو لبنان کے لیے ایک بڑی کامیابی بتایا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سمجھوتا لبنان کی جنتا، سرکار اور پرتیرودھ کے لیے ایک بڑی سفلتا ہے۔ زائنی شاسن نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ سمندری سیما پر ہوئے سمجھوتے میں لبنان کی اور سے کسی بھی سرکشا کی گارنٹی نہیں دی گئی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ جو بھی لبنان پر اسرائیل کے ساتھ سمبندھ سامان کرنے کا آروپ لگا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ان آروپوں کا کوئی آدھار نہیں ہے۔ حزب اللہ مہاسچیو نے کہا کہ ہم اس سمجھوتے کے بعد اس کی آگے کی ساری پرکریا پر پوری طرح نظر رکھیں گے تاکہ لبنانی جنتا کے ہتوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی سازش نہ ہو سکے۔ ہمارے لیے سب سے مہتوپورن چیز دیش کی جنتا کے ہت ہیں۔ لبنان کی راجدھانی بیروت سے IRIB کے سنواددتا حسن عظیم زادی کی رپورٹ۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاست کشمیر میں سرکشا بلوں اور چھاپہ ماروں کے بیچ جہاں بھیشڑ جھڑپیں لگاتار جاری ہیں، وہیں کشمیر کی پورو مکھ منتری محبوبہ مفتی نے بھارتی سرکشا بلوں پر کیچ اینڈ کل کی نیتی اپنانے کا سندھے بھی جتایا ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمواددتا سپت محمد حسن۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش اور جموں کشمیر کی بھوت پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں جس طرح سے لوگوں کو ہتاحت کیا جا رہا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے لوگوں میں نفرت بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ دکشنی کشمیر میں ایک ویکتی کو اپہرن کرنے کے بعد ہتاحت کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ کراس فائرنگ میں مارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گھٹنائیں نہیں گھٹنی چاہیے اور میں لوگوں سے بھی بنتی کرتی ہوں کہ وہ ہنسا کا دار چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شانتی پوروک ڈھنگ سے اپنے مطالبات منوانے ہیں اور میں یہاں کی یوکوں سے بھی ایک پرارتھنا کرتی ہوں کہ وہ ایسا کوئی کاریہ انجام نہیں دے جو ہنسا کی اور جاتا ہو۔ پرنتو انہوں نے نئی دہلی اور جموں کشمیر پرشاسن پر طرح طرح کے آروپ لگائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نواس چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ نواس کبھی بھی چھوڑ سکتی ہے، پرنتو میرا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کی ضرورت ہے اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک جموں کشمیر کو وشیش اختیارات واپس نہیں دیے جاتے تب تک میرا ابھیان جاری رہے گا۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا
کہ جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی کی موت کا سوال ہو جس نے بہت ہی مشکل حالات میں کشمیر میں رکنے کا فیصلہ کیا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ جو دو یو پی سے جو دو مزدور لوگ ان کو مار دیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہائیبرڈ کے نام پہ عمران گنائی ایک آدمی کو پکڑا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے اندر اس کو ملیٹنٹوں نے مار دیا۔ تو اگر سیکیورٹی کے اندر رہ کے، کسٹڈی کے اندر رہ کے ملیٹنٹ کسی کو مار سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو ہمارا کشمیری پنڈت مارا گیا، چاہے جو مزدور مارے گئے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یہ جو عمران گنائی جس کو ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے شک پہ پکڑ کے کسٹڈی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کو ملیٹنٹوں نے مارا، اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ واقعہ کیا ہوا، کیا واقعی پولیس کسٹڈی کے اندر ملیٹنٹ اندر گھس کے کسٹڈی میں آدمی کو مار سکتا ہے، کہیں یہ خدا نہ خواستہ جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں یہ کیچ اینڈ کل پالیسی تو نہیں ہے۔
اس بیچ دکشنی کشمیر میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاوادیوں کے بیچ ایک مڈ بیڑ میں ایک چھاپہ مار کے ہتاحت ہونے کی سوچنا ہے۔ سرکشا بلوں کے پروکتا کا کہنا ہے کہ کولگام نامی چھیتر میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاوادیوں کے بیچ ایک مڈ بیڑ آرمب ہوئی جو کافی سمے تک جاری رہی۔ اس مڈ بیڑ میں ایک الگاوادی چھاپہ مار ہتاحت ہوا جس کی ترنت پہچان نہیں ہوئی۔ سرکشا بلوں نے ہتاحت ہوئے چھاپہ مار کے نیانترن سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کرنے کا بھی دعویٰ کیا، پرنتو مڈ بیڑ میں سرکشا بلوں کا کیا کوئی نقصان ہوا اس بارے میں پولیس پروکتا نے کچھ نہیں بتایا۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
پرستوت ہے اگلا کارکرم پتر سنسار۔
पत्र संसार। प्रिय श्रोतागण, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
तो दोस्तों, में आशा है कि आप उससे कुशल हैं اور ہمارا کاریکرم پتر سنسار، جو کہ آپ کا اپنا کاریکرم ہے، اسے سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ دیدی ہمیشہ شروع کرتی ہیں ای میل سے، اور بہت پہلے، کافی پہلے شروع کیا کرتی تھیں آپ کے پتروں سے۔ پتر سنسار کا آغاز ہوا کرتا تھا، لیکن پتروں کا سلسلہ تو اب نئے حالات میں رک چکا ہے، اس کی جگہ دوسرے وکلپ آ گئے ہیں، اور ان وکلپوں سے اب وچاروں کا آدان پردان ہو رہا ہے اور سندیش ایک دوسرے تک پہنچ رہے ہیں۔ تو دیدی نے بھی اپ گریڈ کیا ہے پتر سنسار کو، اور اب پتروں کے بجائے ای میل سے شروع کرتی ہیں۔ تو آج ہماری مہردادی دیدی کے بجائے سواتی دیدی ہیں، मौजूद हैं कार्यक्रम में, तो दीदी शुरू करिए।
जी, पहला ईमेल है ग्राम महदेया मठ जिला मुजफ्फर रजनीश कुमार जी का, और वो कहते हैं कि आजकल आपके प्रसारण हम नियमित सुन रहे हैं और रेडियो पर 25 मीटर बैंड यानी 11,860 किलो हर्ट्ज पर प्रसारण भी साफ सुनाई दे रहे हैं। शुक्रवार को विश्व समाचार और राजनीतिक चर्चा के साथ साथ पत्र संसार और विज्ञान की डगर का कार्यक्रम सुना, जिसमें पत्र संसार के तहत भिलाई छत्तीसगढ़ के आनंद मोहन जी के द्वारा पत्रों में लिखी गई प्रतिक्रिया को सुना और साथ ही साथ हमारे पत्र को भी शामिल किया गया। मुझे बहुत ही खुशी है और अंत में परम आदरणीय मित्र उदयभान ठाकरे जी के विचारों को भी सुना, काफी रोचक भरा लगा। और साथ ही साथ विज्ञान की डगर के तहत विज्ञान के क्षेत्र में ईरान में हो रही तरक्की और शरीर के स्थिति को स्मार्ट तरीकों से बदलने वाली एक विशेष प्रकार की स्मार्ट कुर्सी के बारे में चर्चा की गई, जो मुझे काफी ज्ञानवर्धक भरा लगा। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम पत्र संसार में। आपने हमारे बहुत ही सम्मानीय श्रोताओं के नाम लिए आनंद मोहन बैन जी का, और विचार तो सुने हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं और हम सब एक लंबे समय से संपर्क में हैं। आपका भी इसी तरह से आशा है कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, कार्यक्रमों के बारे में आप विचार हमें भेजते रहेंगे। कार्यक्रम पत्र संसार के साथ ही आपने विज्ञान की डगर के बारे में अपनी राय दी है और उसके बारे में जो उत्साहजनक टिप्पणी की है वो हमारे लिए खुशी की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो श्रोता, बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की, और ये हिस्सा हमेशा बड़ा दिलचस्प होता है कि देखते हैं कि दीदी ने इस हफ्ते के लिए क्या खबर चुनी है।
इस हफ्ते हम आपको शिराज की तरफ ले जाने वाले हैं और शिराज का फूल और पक्षी संग्रहालय के बारे में हम आपको बताएंगे।
जी,
दक्षिणी ईरानी प्रांत फारस की राजधानी शिराज में हाल ही में पर्यटकों के आकर्षण में जोड़े गए स्थानों में से एक शिराज का फूल और पक्षी संग्रहालय है। इस निजी संग्रहालय में मुकर्नस हॉल, मिरर हॉल, फूल और पक्षी पूल और फूल और पक्षी प्लेट जैसे विभिन्न खंड मौजूद हैं। शिराज के कलाकारों की कला का उपयोग शिराज भवन के फूल और पक्षी संग्रहालय के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार में किया गया है। टाइल वर्क, इनले वर्क, मिरर वर्क, फूल और पक्षी के पेंटिंग्स जैसी कलाएं जो शिराज स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई हैं। संग्रहालय की इमारत को 1971 में बनाया गया था और परियोजना के निवेशक की समझदारी और ज्ञान के साथ ये एक ऐसी जगह बन गई जहां शिराज और फारस प्रांत की मूल कलाओं का उपयोग किया जाता है। इसका जीर्णोद्धार 2017 में शुरू हुआ था और इस जगह का उद्घाटन 2022 में शिराज के फूल और पक्षी संग्रहालय के रूप में किया गया। और आगे है, इस संग्रहालय में फूल और पक्षियों की पेंटिंग्स, जावक लकड़ी का काम, गिरी टाइल और बनस लकड़ी का काम, सात रंग की टाइलिंग, दर्पण का काम और कला जो देश में सबसे उत्कृष्ट है और इनका मूल शिराज और फारस प्रांत में उपयोग किया गया है। संग्रहालय में सफवी शासनकाल के चीनी मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। शिराज तीसरा सबसे पुराना शहर है और ईरान का पांचवा सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
और श्रोता, बारी है आपके कमेंट्स की। ये हिस्सा भी हमेशा बड़ा दिलचस्प होता है, इसमें बड़े अच्छे विषयों पर बड़ी अच्छी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं श्रोताओं की। तो दीदी शुरू कर रही हैं अब ये पार्ट।
पहला जो कमेंट है वो है फैजल नाम के पाठक का, और उन्होंने लिखा है कि ज़ायनियों को
दीदी इससे पहले वो खबर होगी कि जिसमें उन्होंने कमेंट किया।
जी जी, मैं वो भूल गई थी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इसराइल, अरिनल उसुद या शेरों का गढ़ नाम के फिलिस्तीनी संगठन के हमलों से कराने लगा गैर कानूनी शासन। तो उन्होंने लिखा है कि ज़ायनियों को सिर्फ ताकत की जबान समझ में आती है, फिलिस्तीनियों को चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की मांग करें, फिलिस्तीनी जाबाजों को चाहिए कि ध्यान दें कि फिलिस्तीनियों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है।
ये अपने जगह पे बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी और बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था कि वेस्ट बैंक के इलाके में जिसे इसराइल ने अपनी ताकत के बलबूते पर अपने धोखे से यानी फिलिस्तीनी प्रशासन को धोखा देकर और उसे मजबूर करके उसने इस पूरे इलाके को अपने लिए बड़ा शांत इलाका बना लिया था और इस तरफ से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा था कि इस इलाके से उसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन हालिया महीनों में एक बड़ा डेवलपमेंट ये देखने में आया कि इसी इलाके में एक संगठन सामने आया। संगठन का नाम है अरिनल उसूद। ये अरबिक वर्ड है, असद के की मीनिंग होती है लायन या शेर, और अरिन यानी वो जगह जहाँ शेर रहता है, इससे ये नाम इन्होंने लिया है। और इस संगठन ने बहुत तेज कार्यवाही की उस इलाके में। ये पूरा इलाका बिल्कुल छावनी की तरह रहता है आम हालात में भी। इसराइल ने बहुत हमेशा से यहाँ पर बहुत भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद इस संगठन के जांबाजों ने एक महीने के भीतर सितंबर महीने में इन्होंने 30 से ज़्यादा, लगभग मुझे लगता है जहाँ तक 37 हमले किए, जिसमें कई इसराइली मारे गए, उसमें सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। तो इससे पूरा हंगामा तहलका मच गया पूरे इसराइल में कि ये नया गज़ा यहाँ बन रहा है। गज़ा तो जाहिर है उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है, ये इलाका भी गज़ा बनता जा रहा है, इस पर बड़ा हंगामा हुआ। तो जिस तरह इशारा किया है फैजल साहब ने, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई उन्होंने लड़के ये बता दिया कि जो समझौते थोप दिए गए थे ओस्लो समझौते के नाम से, और जो फिलिस्तीनी प्रशासन ने किए थे, उसे ये फिलिस्तीनी युवा और नई नस्ल कबूल करने पर तैयार नहीं है। कोई धोखा खाने वाली नहीं है, बल्कि प्रतिरोध करेगी और उस जगह से प्रतिरोध करेगी जिसकी तरफ से इसराइल अपने आप को बड़ा संतुष्ट समझ रहा था। तो श्रोताओ, अब बारी है आप में से किसी माननीय श्रोता के विचार सुनने की। देखते हैं कि दीदी ने हमारे किस श्रोता का चयन किया है इस सप्ताह के लिए।
जी, आज हमारे जो श्रोता हैं जिनके बारे में हम सुनेंगे, जिनके विचारों को, उनका नाम है दिलशाद हुसैन।
जी, तो आइए सुनते हैं दिलशाद हुसैन साहब के विचार।
मैं दिलशाद हुसैन ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं रेडियो तेहरान का ये कहूँ कि मैं बहुत पुराना सोता हूँ तो ठीक नहीं होगा, आप लोग तो जानते हैं। वैसे तो मैं उर्दू सर्विस का लिसनर हूँ, फिर भी हिंदी सुनता हूँ। वही कार्यक्रम तो हमको हिंदी में सुनने को मिलते हैं। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी सेवा में कोई कमी नहीं, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, हृदयस्पर्शी हमें लगता है। हमें अपने दीन के बारे में बहुत मालूमात उनको रेडियो तेहरान से मिलती है, जो हम नहीं, कुछ ऐसी जानकारी हमको मिलती है जो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम रेडियो तेहरान को बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बस हमारी एक ही परेशानी है, हम तो रेडियो सुनते हैं, नेट से सुनते नहीं हैं, जी कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मध्य परिवार के हैं रेडियो ही सुनते हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे प्रिय श्रोता दिलशाद हुसैन साहब, जिनके विचार हमने सुने। और हमारे पास दीदी थोड़ा सा समय और बच गया है, तो आप कमेंट और शामिल कर सकते हैं।
तो एक कमेंट और शामिल कर सकते हैं जी। तो क्या ये जो नेक्स्ट कमेंट है, ये है केरल के राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी, ये खबर है जिसके ऊपर एक हमारे श्रोता ने जो कमेंट किया है, उनका नाम है आशीष कुमार और वो लिखते हैं कि सीपीआई के नेता का कहना है कि केरल की उच्च शिक्षा प्रणाली में हिंदुत्व की विचारधारा को फैलाने के लिए कुलपतियों से त्यागपत्र मांगा गया है। भारत के केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा देने को कहा है, और जिसमें ये आगे लिखते हैं कि अचानक लगभग एक दर्जन कुलपतियों से त्यागपत्र मांग लिया जाए, क्या शिक्षण संस्थाओं को तबाही की गहराई में झोंकने का इरादा है? जी
ये एक बड़ी खबर हालिया दिनों देखने में आई, पढ़ने में आई भारतीय मीडिया में। केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, इस वक्त राज्यपाल हैं। राज्यपाल जाहिर है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है किसी भी राज्य में, तो उसे आमतौर पर इस तरह से देखा जाता है कि वो किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो सारे दलों के लिए है और सारे दल उसकी नज़र में एक समान है, उसकी इस तरह की हैसियत होती है। लेकिन हालिया वर्षों में, यानी आज की बात नहीं है बल्कि इससे और भी पहले, ये देखने में आया कि गवर्नर का जो जिस पार्टी से संपर्क रहा होता है उसका झुकाव उस तरफ रहता है, ये बात देखने में आई है। बहरहाल ये मामला इस वक्त बड़ा मीडिया में उछला और इस पर बड़ा एक बड़ी आपत्ति जताई गई कि ये क्या बात है कि एक बार एक साथ 9 कुलपतियों से एक दर्जन करें, लेकिन 9 कुलपतियों की बात है कि 9 कुलपतियों से इस्तीफा उन्होंने मांगा। तो दीदी हमारे पास अब समय यहीं पर खत्म होता है, तो श्रोताओं अगली मुलाकात तक दीदी स्वाति और अहमद अब्बास को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ईरान और दुनिया में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
जीरूफ्स और किरमान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोगशाला अध्ययन में एक प्रकार का नैनो कैटलिस्ट तैयार किया है जिसका आधार सामग्री औषधीय पौधे की एक प्रजाति है। इस नैनो कैटलिस्ट का इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री में किया जाएगा। कैटलिस्ट क्या है? रासायनिक उद्योग का एक अभिन्न अंग है। जीरूफ्स यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी मेम्बर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का मकसद पौधों का इस्तेमाल उत्प्रेरक पैदा करने के लिए करना है। शोधकर्ता के अनुसार उत्प्रेरक आधार के रूप में सेल्यूलोज को निकालने के लिए एक प्राकृतिक संसाधन के उपयोग की वजह से पहली बार संश्लेषण की लागत को काफी कम कर दिया गया है और दूसरे चरण में उसने पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम कर दिया है। इस शोध के परिणाम वर्ष 2018 में कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।
आज़ाद इस्लामी विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने 3D प्रिंटर द्वारा कैल्शियम सल्फेट स्ट्रक्चर को नैनो सिलिका के साथ मिलाने और उसका लेप तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। परियोजना के आयोजकों के अनुसार वर्तमान में मध्यम आयु वर्ग की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हड्डियों के टूटने फूटने की समस्या बहुत आम हो गई है और दुनिया में डोनरों की काफ़ी कमी हो गई है। यहाँ मरीजों की मदद के लिए टिश्यू इंजीनियरिंग के तरीकों का इस्तेमाल कर स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है।
इस शोधकर्ता के अनुसार हड्डी का मचान बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके ज़्यादा अच्छे ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और मचान बनाने के नए तरीके में 3D प्रिंटर का उपयोग होता है। पिछले तरीकों की तुलना में 3D प्रिंटर के उपयोग के कई फायदे हैं, क्योंकि इस पद्धति में मचान के मापदंडों को डिज़ाइन और नियंत्रित करना संभव होता है। इस शोध में 3D प्रिंटर के साथ कैल्शियम सल्फेट इसके फोल्ड बनाया गया और उस पर नैनो सिलिका कोटिंग की गई ताकि इसके फोल्ड की मजबूती बढ़ाई जा सके।
शोधकर्ता के अनुसार इस शोध के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग और नैनो सिलिका के साथ कोटिंग दुनिया में पहली बार हुई है। इस अध्ययन में चोट के स्थान पर शरीर के ऊतकों की सूजन को रोकने के लिए दवा डेक्सामेथासोन को मचान में डाली जाती है और इसे शरीर में छोड़ा जाता है। इस प्रकार से डेक्सामेथासोन दवा के साइड इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मचान को हड्डी के उत्तकों में फिट करने में सफलता हासिल की जा सकती है। 3D डिज़ाइन और प्रिंटिंग के बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का उपयोग करके मचानों की स्थिति की समीक्षा की जाती और उसकी स्थिति को देखा जाता है और आर्किमिडीज विधि और क्लोन इमेज मेजरमेंट सॉफ्टवेयर द्वारा इसे तैयार किया जाता है। स्काईफोल पर डिग्रेडेबिलिटी, बायो एक्टिविटी और स्ट्रेंथ जैसे टेस्ट भी किए गए। शोधकर्ता ने कहा कि शोध के परिणामों के व्यवसायीकरण के लिए जानवरों और फिर मनुष्यों पर परीक्षण की आवश्यकता है।
हड्डियां किसी दुर्घटना जैसे कि गिरने से या किसी चीज की चपेट में आने से टूट सकती हैं। टूटी हुई हड्डी, जिसे फ्रैक्चर के रूप में भी जाना जाता है, के 3 सबसे सामान्य लक्षण होते हैं, दर्द, सूजन और विकलांगता। हालांकि कभी कभी ये बताना मुश्किल हो सकता है कि कोई हड्डी टूटी हुई है या नहीं। यदि वो अपनी जगह से हटी हुई नहीं हो तो, यदि आपकी कोई हड्डी टूट गई है तो आप इन बातों का अनुभव कर सकते हैं। चोटिल होने पर आपको झटके या चटकने की आवाज़ सुनाई दे सकती है या महसूस हो सकती है। चोटिल हिस्से के आसपास सूजन, खरोंच या संवेदनशीलता हो सकती है।
चोट की जगह पर वजन डालने, उसे छूने, उसे दबाने या उसे हिलाने पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। चोटिला हिस्सा विकृत लग सकता है, विशेषकर गंभीर रर्व से टूटने की स्थिति में। टूटी हुई हड्डी त्वचा को छेदती हुई बाहर को निकली हुई हो सकती है। इसके अलावा आप हड्डी टूटने के सदमे के परिणाम स्वरूप बेहोशी, चक्कर या उपकाई महसूस कर सकते हैं। यदि हड्डी कम टूटी है या हड्डी में सिर्फ एक दरार पड़ गई है तो आपको बहुत दर्द महसूस नहीं होगा, या हो सकता है कि आपको हड्डी के टूटने का पता भी ना चले। यदि आपको लगता है कि आपकी हड्डी टूटी हुई है तो आपको जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके पैर का पंजा या कोई उंगली टूट गई है तो आप किसी अस्पताल या तत्कालीन उपचार केंद्र पर जा सकते हैं।
जहाँ बहुत गंभीर रूप से टूटने का संदेह हो, जैसे कि टूटी हुई गर्दन या पीठ, तो ऐसे में इलाज के लिए सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं को बुलाया जाना चाहिए। प्रायः प्लास्टर चढ़ाते समय टूटी हुई हड्डी को ठीक से सीधा करना चाहिए और इसे सही से उसकी जगह पर रखा जाना चाहिए ताकि ये सही स्थिति में रहे और ठीक हो जाए। यदि आपका इलाज उचित रूप से नहीं होता है तो आपको गंभीर संक्रमण या स्थायी विकृति हो सकती है। आपको जोड़ों में दीर्घकालिक समस्याएं भी हो सकती हैं।
अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डी टूट गई है तो ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी न खाएं या पिएं, क्योंकि डॉक्टरों को इसे पुनः ठीक करने के लिए आपको एक सामान्य बेहोशी की दवा देने की जरूरत पड़ सकती है। वृद्ध लोगों और ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी हड्डियां कमजोर होती हैं और अधिक आसानी से टूट सकती हैं।
एक नए अध्ययन में नासा के शोधकर्ताओं ने पाया है कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी की धुरी में सालाना 2 सेंटीमीटर का बदलाव आया है, जिससे पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी की धुरी 2 मीटर से अधिक स्थानांतरित हो गई है। अलबत्ता झटके या हिलने का मानव दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन GPS पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रहों और जमीनी वेधशालाओं में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकी गणना की जानी चाहिए।
शोधकर्ताओं ने पहले शोध किया है कि पानी की गति पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है। पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन का एक कारण पृथ्वी की सतह पर भार का असमान वितरण है। साथ ही पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है और मूल रूप से एक अंडाकार गोला है जो अपने 2 ध्रुवों पर थोड़ा अधिक लंबा है। इस कारण ये अपनी धुरी पर घूमने पर हिलता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया है कि बर्फ पिघलने के 3 कारक हैं। पृथ्वी की गति और ग्लेशियर की वापसी पृथ्वी की धुरी बदलने में भूमिका निभाते हैं।
नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक शोधकर्ता के अनुसार परंपरागत रूप से इसका कारण यह है कि पृथ्वी के घूमने की धुरी की गति में इस बदलाव के लिए आइस रिएक्शन नामक प्रक्रिया जिम्मेदार है, लेकिन हाल ही में कई शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि अन्य प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण संभावित प्रभाव हो सकते हैं। ये ऐसी हालत में है कि पिछली शताब्दी के दौरान बढ़ती गर्मी की वजह से बर्फ की चादरें या ग्लेशियर पिघल गए और ग्रीनलैंड महासागर इसके ज्यादा निशाने पर है। इस तरह से कि 20वीं सदी के दौरान 7500 गीगाटन ग्रीनलैंड की बर्फ समुद्र में पिघल गई है।
दोस्तों, यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि 2 अन्य कारण स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं। पिछले आइस एज अर्थात हिमयुग के दौरान लगभग 26,000 वर्ष पहले पृथ्वी की अधिकांश सतह ग्लेशियरों से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न हिमनदों का निकलना था। हालांकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पृथ्वी धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। वैज्ञानिक इसे बर्फ की वापसी का नाम दे रहे हैं, और क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है इसलिए पृथ्वी पिछले हिमयुग से इसके प्रभावों से मुक्त नहीं हुई है। पृथ्वी की गति भी भूमिगत प्लेटों में गति है जो ग्रह के कोर की गर्मी के परिणाम स्वरूप होती है।
ये शोध अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जर्नल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। हिमयुग किसे कहते हैं? विश्व की जलवायु के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी के इतिहास में जलवायु परिवर्तनों के फलस्वरूप अनेक ठंडे एवं गर्म मौसम के दौर आते रहते हैं। अधिक ठंडे दौर को हिमयुग कहा जाता है, जैसे कार्बोनिफेरस हिमयुग, प्रतिनूतन हिमयुग। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के समय को पृथ्वी की संरचना एवं उसमें हुए भौगोलिक परिवर्तनों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ऐसा ही एक समय जिसे प्रतिनूतन हिमयुग कहते हैं कि जलवायु असामान्य रही।
10,00,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक चलने वाला प्रतिनूतन हिमयुग सबसे छोटा और अंतिम हिमयुग था, जिसमें 3 बार बीच बीच में थोड़े कम ठंडे दौरे भी आए। उनको अंतिम हिमयुग कहा गया है।
संपूर्ण प्रतिनूतन हिमयुग में असाधारण ठंड पड़ी, जिससे महाद्वीपों तथा महासागरों का बहुत बड़ा क्षेत्र हिम से ढक गया। इसी समय को विशाल हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यही समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। श्रोताओं, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं और ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो श्रोताओं, इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
Es ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.